Ayet 4. Ma yujadilu fi ayatillahi illazina kafaru fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Nahi jhagadte Allah ki ayat mein magar wahi log jo kufr karte hain to ae nabi zameen mein inka chalna firna aapko dhoke mein na dal de. دیکھیں یہ اللہ کے نبی کو خطاب کر کے ہم سب کو بتا دیا کہ اے مسلمانوں غیر مسلموں کے مادی وسائل ان کی طاقت ان کی ٹیکنالوجی سے تم مرعوب نہ ہونا کوئی دنیاوی سپر پاور تمہیں دھوکے میں ڈال کر اللہ کی سپریم پاور ہونے سے دور نہ کر دے یہ جھگڑے کب ہوتے ہیں کس کے ہوتے ہیں جب لوگوں کو اللہ کی بات پیش کی جائے اور وہ بات ان کے عمل سے ٹکرائے تو ایسے وقت میں پھر وہ اس کو لینا نہیں چاہتے ناجائز اور باطل جھگڑے ہیں حق کی تکذیب کا جھگڑا یہ اللہ کی بات کچھ اور وقت کا رواج کچھ اور ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں روکتے ہیں کہ تم نے ایسے نہیں کرنا ضرور لوگوں کو اللہ کا پیغام دو چھپانا نہیں ہے سورۃ آل عمران آیت 187 میں ہم پڑھ چکے لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ تم ضرور اس کو لوگوں کے لیے بیان کرو گے اور اس کو چھپاؤ گے نہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں کے جھگڑوں کے خوف سے تم نے اس کو چھپانا نہیں ہے کج بحثیاں میخے نکالنا آج آپ کو مجھے جھگڑے نہیں سمجھ آتے ایک میٹر کپڑا لوگوں کے لیے جھگڑے کا ذریعہ بنا ہوا ہے چند انچ کی داڑھی مسئلہ بنی ہوئی ہے ٹخنوں سے اونچی شلوار ہے اور الٹے سیدھے اعتراض ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر اور قرآن کے لفظوں کو ادھر سے ادھر اڑا کر ایسے شک اور شبہات پیدا کر کے اسلام کے اوپر جو باتیں ہیں آج تو لگتا ہے کہ سارا میڈیا اس کی طرف آ گیا اور ہر طرف سے یہ باتیں ہو رہی ہیں آج بھی آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ برائی کو پسند نہیں کرتے لیکن چند لوگ ہیں نہیں آ گئی کہ جس کی وجہ سے چھوٹی بات بڑی بنتی ہے جب آج ہم دنیا کا ایک رخ دیکھتے ہیں اور خاص طور پہ اگر ہم یہ جھگڑوں کی باتوں کو اگر یہاں دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور لے لیجئے یا باقی انبیاء کرام کا دور دیں لوگ خود آ کے بات کر دیتے تھے کیونکہ وہاں ون آن ون بیسڈ بات ہوتی تھی آج کے دور میں کون ہے ہمارے سامنے میڈیا ہے پریس کہتے ہیں کہ پہلے دور میں سٹارز کی پوجا ہوتی تھی نا لوگ ستاروں کی پوجا کرتے تھے اور اس چیز پہ موٹیویٹ کرنے والے پریسٹ ہوتے تھے وہ کہتے تھے ان کو پوجو پریسٹ میں گڑبڑ آ گئی آج لوگ فلمی ستاروں کی پوجا آرٹسٹوں کی پوجا اور اس پہ موٹیویٹ کرنے والا پریس ہے پریس نے برائی کو اتنی کوریج دی کہ تھوڑی سی برائی لگتا ہے پورے معاشرے میں پھیل گئی ہے حالانکہ آج بھی اگر آپ دیکھیں کتنے لوگ ایسی گندی چیزوں کو پسند کرتے ہیں اپنے ملکوں کی بات کر لیں ویسے کی بات نہ بھی کریں شاید پاکستان پورے میں اگر آپ ووٹنگ کرا لیں اگر آپ کوئی پول کروا کے دیکھ لیجئے شاید 5-10% لوگ فلمیں گانے اور جو بھی وقت ضائع کرنے والی چیزیں ان کو پسند کرتے ہوں گے 95% لوگ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے کتنی عورتیں ہیروئنیں بنتی ہیں 8-10-20-25 اور کتنے لاکھوں کی آبادی ہے لیکن وہ چند لوگوں کو جب میڈیا نے روز تصویروں میں دکھایا ان کے میگزین چھپے ان کے ڈائجسٹ بنے ایسے لگا سارے ہی وہ کرنے لگے مجھے اور آپ کو آج کے دور میں کیا کرنا ہے یہ کرنا ہے نیکیوں کو کوریج دینی ہے لوگوں کو دکھائیں کہ لوگ اسلام کا کام کر کے بھی کتنے خوبصورت لگتے ہیں لوگ اسلام کو کتنے آسان درجے پہ کرتے ہیں اور آج الحمدللہ جو ہمارے مسلمان بھائی بہن ویسٹ میں ایک آرگنائز طریقے سے دین کا کام کر رہے ہیں وہ اس میں کافی حد تک کامیاب ہیں آج ہم نے چینلز کے نام سن لیے نا پیس چینل اگر آج کے دور میں ہے تو لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ مسلمان بھی کچھ کر سکتے ہیں تو صرف بحث برائے بحث کی بات نہیں ہے اصل یہ کہ کچھ کر کے دکھاؤ ورنہ یاد رکھیے کہ ہر بندے کے اندر نیکی کی خواہش ہے میرے اندر بھی آپ کے بھی اندر ہے یہ وقتی طور پہ صرف ہم مرعوب ہونے لگتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ ایسی بحثوں کی بجائے اور تم ان کے سحر سے نکلو یہ جو بات ہے نا کہ لا یغرنک تکلب فی البلاد آپ اپنے اوپر لیں سچ بتائیں میں اپنے بچپن کی بات بتاتی ہوں ہمارے لاشعور میں یہ پڑا تھا کہ جو بہت ٹریولنگ کرے وہ بہت خوش قسمت ہے اور بریف کے ساتھ میں دکھا کر کوئی ایک جہاز سے اتر رہا ہے کوئی دوسرے سے اتر رہا ہے فلمیں کوئی اس دور میں ہوتی ہوں گی جن کو تھوڑا بہت انسان دیکھتا ہے ہیروئنوں کو یعنی جب بھی کسی کی کامیابی دیکھنی ہو نا تو یہی دکھتا ہے کہ وہ سوٹڈ بوٹڈ ہے اور ہاتھ میں بریف کیس ہے اور ٹک 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 کرتا ہوا کلین شیو جا رہا ہے اور اسلام ہو رہے ہیں اور وہ میٹنگز اٹینڈ کر رہا ہے بہت سکسیزفل ہے اور کسی بیچارے کو غریب نمانا مظلوم دکھانا تو لمبی سی داڑھی اور چوغا اور پاؤں میں سلیپر جوتے گھسیٹتی ہوئی ہیں مروب ہو گئے ہم بھی اسی لیے پھر ہمارے بچوں نے دین چھوڑا مسجد کا امام بنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان کو تو روز شام کو کھانے کا ٹرے آتا لوگوں کے گھروں سے مولوی صاحب کا کھانا और लोग बड़े खुश हैं जी, मौलवी साहब को खाना दे के हमारे सारे दिन के गुनाह माफ है कि नहीं। ये सोच इसको तोड़ने की जरूरत है आज। दीनदारों को पूरी अना और ईगो के साथ दीन फैलाने की जरूरत है, वो लोगों के हाथों से मांग के ना खाए। इस तरह से इस शहर से अगर आज इस जनरेशन को हम निकाल गए तो अगले दौर में मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ, अल्लाह पे उम्मीद लगा के कह सकती हूँ, जिस तरह आज आपके बच्चे सीए करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, सो ऑन है ना डिग्रीज। कोई और नाम आप भी ले दें, मुझे तो याद नहीं आ रही, कोई नाम लीजिए आज के दौर की डिग्री है। MBA करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर हमने इस्लाम को ग्लैमराइज करके दिखाया तो अगले दौर में लोग इस फख्र के साथ हमारे बच्चे स्कूलों और यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में पढ़ेंगे कि जहां वो शरिया की डिग्री करेंगे, जहां वो तौहीद सीखेंगे, जहां वो कुरान के आलिम बनेंगे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चे पहुंच जाते हैं, अल्लाह उनको ले जाता है सऊदी अरब और उसकी यूनिवर्सिटीज़ और जो भी इस्लामिक स्कूल हैं, तो वहां आप देखिए कि उनमें ग्लैमर है, उनकी आला तालीमात हैं, उनके पास गाड़ियां भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते पढ़ाते हैं। अल्लाह ने ऐसे बच्चे खड़े कर दिए आज भी। इस शहर से निकालें। पहले दौर में कहता बच्चे को मौलवी बनना, अच्छा चलो जाओ मस्जिद में, टूटा हुआ डेस्क पड़ा हुआ बैठ के पढ़ो। वो कहते मैंने नहीं बनना। आप आज उस लेवल के इस्लामी इदारे खोलें बचपन से, अगर आप अपने बच्चों को ऐसे इस्लामिक इदारों में पढ़ते पढ़ाते जिसका स्टैंडर्ड आपके मुल्क के स्टैंडर्ड से अच्छा होगा, वो ज़रूर दीन सीखेंगे। दीन में तो कोशिश इतनी है, वो हाफिज बनेंगे, शर्त यह कि उनको डंडे मार के नहीं यूज़ कराना। वो ज़रूर कुरान की तफसीर तर्जमा सीखेंगे, शर्त यह है कि आपने उनको कोई ख़ास सोच के साथ गुलाम नहीं बना देना। तो ये शहर निकालें। पहले ऐसे लगता था ये लोग बड़े बाखलाक हैं, बड़े खुश रहते हैं, ये झूठ नहीं बोलते। ये मैं अपने लाशौर से आपको बता रही हूँ, गोरे लोग झूठ नहीं बोलते, गोरे लोग ये बहुत होते हैं, ये बड़े ईमानदार हैं। अब आप ये छोटे झूठ तो छोड़ दीजिए, जो वर्ल्ड लेवल पे झूठ बोले जाते हैं उसको ही देख लें। आप देखिए आयत पे जरा गौर करें, मा यू जादिलू फी आयातिल्लाह इल्लल्लज़ीना जीना कफरू। ये अल्लाह जीना कफरू क्या है? ये नॉन मुस्लिम्स की बात है? नहीं, कुफर का लफ्ज़ अरबी जुबान में दो मानों में आता है और यहाँ दोनों मानी है। एक है कुफरान नेमत, नाशुक्री के मानों में, और दूसरा होता है इनकार हक। हक का इनकार कौन करता है? डिसबिलीवर, नॉन मुस्लिम है। हम, मैं और आप मुसलमान यहाँ कुफरान नेमत करते हुए दिखते हैं। इस्लाम मिला, नबी के उम्मती बने, कुरान हमारे घरों में सजे हुए हैं, हम इसको हर मौके पे पढ़ते पढ़ाते हैं, लेकिन जब अल्लाह की आयतों का बात आती है सबसे ज़्यादा मुखालफत करते हैं। शादी की हो या गमी की हो या खुशी की हो जो कुछ है, तो असल बात यह है कि नाशुक्रे लोग अल्लाह की आयात पे झगड़े करते हैं। मैं तो कभी वक्त ज़ाया ना करूँ ऐसे लोगों को अपनी सफाई देने में, मेरी बला से वो कुछ भी मेरे बारे में कहें, कुछ भी समझें, मुझे इस बात की फिक्र है कि मैं ठीक काम कर रही हूँ कि नहीं कर रही। जब बंदा अल्लाह के मुकाबले में नेमतों की नाकदरी करता है तो यही हाल होता है कि फिर उसको परवाह नहीं होती। इसलिए इन झगड़ों को छोड़कर अल्लाह ताला हम सबको मशवरा देते हैं कि अपने काम से काम रखो और तुम इन बातों के शहर से निकल जाओ। अब मैं और आप अगर अपने आप को इन चीज़ों से दूर कर लें तो बाकी तो फिर दूसरी बात है। अगली आयतों में माजी की मिसालें दी गईं, कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौम नूहिम व अहज़ाबुम मिन बादिहिम। इनसे पहले नूह की कौम ने झुठलाया था और इसके बाद बहुत सारी दूसरी कौमों ने भी। ए नबी, आप फिक्र क्यों करते हैं? आपसे पहले ये कहानी तो हजरत नूह से शुरू हुई भी है। क्या किया था लोगों ने? वह हम्मत कुल्लु उम्मतिन बि रसूलिहिम लियाख़ुज़ूहू। मैं तो इन आयतों को पढ़ते हुए फौरन मक्का में चली जाती हूँ। अल्लाह का नबी खड़ा है और लोग झुठला रहे हैं, और कोई एक इल्ज़ाम कोई दूसरा इल्ज़ाम, तो अल्लाह कह रहे डोंट वरी मेरे नबी, इन्होंने आपसे पहलों को भी झुठलाया था, हत्ता कि इन कौमों ने अपने रसूल के मुतल्लिक ये फैसला कर लिया था कि लियाख़ुज़ूहू, पकड़ लें। इसको क्या मुराद है? इसे कत्ल कर दें, मुआसा कर लें, पकड़ लें। वजादलू बिल बातिल लियुदख़िदू बिहिल हक्का, और वो बातिल दलीलों के साथ झगड़ते रहे ताकि इसके जरिए हक को पिसपा कर दें, हक को पीछे कर दें। फिर क्या हुआ? फ़ख़ज़्तुहुम, एक लफ्ज़ की बात है, मैंने उनको पकड़ लिया। क्योंकि मैं कौन हूँ? शदीदुल इक़ाब हूँ। मैं पीछे लग जाऊं तो मैं छोड़ता तो नहीं हूं बंदों को। फिर आप पूछो इनसे, फकैफ़ काना इक़ाब, तो कैसी रही मेरी सजा? इससे भी बड़ा कुछ चैलेंज किया जा सकता है कि वक्त के नबी के आगे आते हो, उसको बुरा कहते हो, तुम देखो तुम मुसलमानों के मुंह लगते हो। देखिए आज मैं और आप असली मुसलमान बन जाए ना तो लोग आपसे डरने लग जाए। आज हम नकली मुसलमान हैं, इसलिए ये धमकियां, हम आपको ये कर देंगे, हम रिपोर्ट कर देंगे, हम ये कर देंगे, आपने अल्लाह का नाम नहीं लेना, बच्चों को इस्लाम नहीं सिखाना, होमोसेक्सुअलिटी को इमोर्टल नहीं करना, कि मुझे इस वीक किसी ने बताया कि ये कह रहे हैं कि अब अगर आपने अपने बच्चों को ये बताया कि ये इमोरल है, इमोरल ही कहते हैं ना, यानी कि होमोसेक्सुअलिटी इज ओके, ये सिखाएं, ना सिखाए तो हम आपके बच्चे ले जाएंगे। तो इससे ज्यादा बड़ी बात है कि युजब्बिहून अबनाकुम वयस्तहयून निसाकुम। अब ये कब होता है? आप दूसरों को तो बुरा ना कहे, जो ये बिल पास करें उनको तो इससे भी ज्यादा करने चाहिए। इसमें वजह क्या है? अपने ऊपर ले। मैं एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, शायद फायदा हो आपको, किसी को पहले भी दी हुई है कहीं ना कहीं। आप देखिए कि एक शेर है जंगल में, लोग उसके नाम से डरते हैं, डरते हैं ना, खौफ खाते हैं, जंगल के लफ्ज के साथ ही आ जाता है जंगल का शेर। एक वो शेर है जो सर्कस में लोगों के इशारों पे नाचता है, लोग उसको देखने के लिए बल्कि पैसे लगा के टिकट लेकर जाते हैं। फर्क किस बात का है? कि लोगों को पता है कि जंगल का शेर असली शेर है, और ये सर्कस का शेर जो ये शेर की खाल में भूसी भरकर ऊपर से डोरियां चल रही हैं, ये इशारों पर नाच रहा है। बात वाज है, उनको पता है इस शेर से खतरा कोई नहीं। जब मुसलमान असली मुसलमान होता है तो वो जंगल के शेर की तरह घोराता, मदीना में और शाम में बैठे लोग कांपते हैं। अबू बकर उमर का दौर याद कर लीजिए, उधर उमर बोलते थे और शाम के लोग जो थे ना वो मीटिंग्स बुला लेते थे आज की जुबान में, कि ये उमर का क्या करें, कर कुछ नहीं सकते थे, क्योंकि उनको पता था कि उमर असली उमर है। और जब मुसलमानों ने इस्लाम की खाल के अंदर भूसी भरी हुई है, कुफर के इशारों पे चल रहे हैं, उनकी मरूबियत उनके दिलों पे है जो ऊपर आयत में बात हुई, तो फिर वो हमें डराते हैं, वो हमें तिगनी का नाच नाच कहते हैं, नाच देखना है और दिखाऊं तुम्हें मुसलमानों का नाच। अल्लाह तआला कहते हैं वजादलु बिल बातिली, वो बातिल दलीलों के साथ झगड़े करते हैं, क्यों? ली युदखिदु, ये जो लफ्ज है ना ली युदखिदु, दखजा से पीछे भी गुजर गया हुआ, गायब कर देना किसी चीज को, यानी पीछे हटा देना, यानी अगर इनको खबर हो जाए ना कि मुसलमान कॉम्प्रोमाइजिंग मुसलमान है, तो ये मुसलमानों के साथ आके और झगड़े करते हैं। आप इनकी एक बात तो मान लें, आज आप कहते हैं ठीक है हम इस्लाम के नाम पे ये बिल पास कर देते हैं कि नकाब इस्लाम में है ही नहीं है, चेहरे का पर्दा नहीं, खुश हो गए? नेवर। कुछ दिन गुजरेंगे, अच्छा चेहरे के पर्दे से जान छुट गई, अब स्काफ पे ले आएंगे आप, वो भी इनके कहने पर कर दें, क्या फर्क पड़ता है, सर के काले बाल ही है ना, उतार दो भाई। आज का इस्लाम ये है कि सर पे स्काफ भी ना लो, इससे ये बैड फील करते हैं, वो भी उतार दें। अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ अगले साल वो आपसे जिस्म के कपड़े उतरवाने का बिल पास करवाएंगे। ली युदखिदु बिहिल हक्का दखिजा, हक ऐसे लगता है जैसे धक्का देना चाहते हैं हक को, जब लोग इस्लाम के कवानीन को धक्के दे के हटाते हैं, फाखस्तु, तो अल्लाह की पकड़ आ जाती है। पहले फौरन क्यों आती थी? पहली बात है लोग थोड़े होते थे, और दूसरी बात है कि जो लोग हक पे होते थे वो जमे होते थे। आज इतना इस्लाम के बारे में लोग बड़बड़ बड़बड़ बोलते हैं, जाहिर लगता है कि अभी अल्लाह ताला को उतना गुस्सा नहीं आ रहा। इसकी वजह यह है कि आज एक तो हम हैं बहुत, और दूसरी बात है कि हम हैं बहुत ढीले। आज अगर इस मीडिया को मुत्तकी बना दें, तो यकीन करें कि ये जो युदखिदु बिहिल हक है ना, ये युदखिदु बिहिल बातिल की सूरत में बदल जाए, और इसके लिए मुसलमानों को काम करना पड़ेगा। गैर तो नहीं ये काम करेंगे, आप बताइए, नॉन मुस्लिम तो नहीं इस्लाम का कोई काम करेंगे, ये तो मुझे और आपको करना है। और हम कब करेंगे? जब हमारे जाती तकाजे दबेंगे, जिस एहतमाम से हम अपनी जाती जिंदगी को सेलिब्रेट करते हैं ना, उसको हम दीन की सेलिब्रेशन में बदल देंगे, फिर देखिए कैसे इंसान बदलता है। आज तो हर तरफ लियुदखिदु बिहिल हक्का की कोशिश है, आपको नहीं लगता? मुझे तो वैसे दिन ब दिन लगता है कि जैसे कुछ चैलेंज कर करके दीन को और इस्लाम को और मोरालिटी को खत्म करने की कोशिशों में, हर अच्छी चीज लोगों को बुरी लग रही है, क्या ये सच के झूठ? हर वो चीज जिस पे इंसान वेस करके कह सकता है कि ये इस्लाम के बेसिक्स हैं और ये फितरत के बेसिक्स हैं, फितरतन हर बंदा बेलिबास होने को नापसंद करता है, आपको मीडिया के जरिए बेलिबास होकर दिखाया जा रहा है। वजह क्या है? कि लोग चाहते हैं कि इस दफा बस एक दफा हक से दूर हो जाए। और ये पूरी सूरत का थीम ये आगे आप मर्द मोमिन के मुकालमे में भी देखेंगे, और आज भी कोई मर्द मोमिन पैदा होगा तभी हालात बदले होंगे। इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं ऐसे लोगों को मेरी जो पकड़ आई उसको तुम देख लो, आज क्यों नहीं आती, या आती दिखे भी तो लोगों को नजर क्यों नहीं आती, इबरत का जहन नहीं दिखता। इसीलिए फरमाया वकज़ालिका हक्कत कलिमतु रब्बिका अलल्लज़ीना कफरू, और इसी तरह इन काफिरों पर भी आपके रब की बात सच हो गई अल्लाह ने डिक्लेरेशन दे दिया, फैसला हो गया, क्या अन्नहुम अस्हाबुन नार, के वो आग के साथी हैं। अल्लाह का ये कानून, अल्लाह की ये अदालत बेलाग है। माजी में भी ये बात हो चुकी, हाल में भी हुई, मुस्तकबिल में भी यही होगी कि जिन्होंने अल्लाह के दीन से मुकाबला किया वो आग के साथी हैं। और ऐ मक्का वालों, तुम पर भी ये बात लागू होगी। कितना आप इस आयतों में इर्तियाश महसूस करते हैं, अल्लाह के नबी पे प्रेशर कितना होगा जब ये आयतें उतर रही थी। कमज़ोर हौसले के तो नहीं थे अल्हम्दुलिल्लाह वो भी, लेकिन अल्लाह ताला उनकी तसल्लियाँ करते हैं। अब अगली आयतों में तौबा की रग़बत दिलाने के लिए फरिश्तों की दुआओं का जिक्र है। अल्लज़ीना यहमिलूना अल-अर्श व मन हौलहू, और वो फरिश्ते जो अर्श को उठाए हुए हैं और जो इनके इर्द गिर्द हैं। पहले तो आप इस आयत को पढ़ने से पहले सूरत ज़ुमर की आखिरी आयतों को जहन में रखिए। क्या पढ़ा था आपने? وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ, और तुम देखोगे फरिश्तों को कि वो घेरे हुए होंगे अर्श को और अपने रब की तस्बीह बयान कर रहे होंगे हम्द के साथ। ठीक है, वहां था कि फरिश्ते घेरे हुए, यहाँ अर्श को उठाने वाले फरिश्तों और उनके साथियों की बात है। ये कौन है वो बाद में देखेंगे। करते क्या हैं ये फरिश्ते, अंडर दी कॉमास कर लीजिए, يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ, वो तस्बीह कर रहे होते हैं अपने रब की। और क्या करते हैं, वह यूं मेनू नबी ही, और उस पर ईमान भी रखते हैं। दो काम हो गए फरिश्तों के। तीसरा काम, वयस्तगफिरून लिल्लज़ीना आमनु, और अहले ईमान के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। अर्श के फरिश्तों के तीन काम क्या हैं? नंबर एक, तस्बीह हम्द के साथ अपने रब की, फिर यूं मेनू नबी ही, अल्लाह पर ईमान है। अल्लाह पर ईमान कैसे लाते हैं फरिश्ते, यहाँ एक साइड पॉइंट लिख लीजिए, हम अल्लाह ताला पर ईमान कैसे लाते हैं? यूमिनून बिल गैब। तो क्या फरिश्ते अल्लाह को देख रहे हैं? नहीं देख रहे, वो भी बिल गैब है, यानी फरिश्ते भी अल्लाह पर ईमान लाते हैं। और तीसरा काम, वयस्तगफिरून लिल्लज़ीना आमनू, और वो दुआएं मांगते ईमान वालों के लिए कि अल्लाह तू इनको बख्श दे। और क्या है दुआ? अब ये फरिश्तों की दुआ, इसको याद कर लीजिएगा। रब्बना वसित कुल्ल शय रहमतं व इल्मा, ए हमारे परवरदिगार, तेरी रहमत और तेरा इल्म हर चीज का इहाता किए हुए, हर चीज को उसने घेर लिया, लिहाजा फ़ग़फ़िर लिल्लज़ीना ताबू, बस बख्श दे तो इन लोगों को जिन्होंने तौबा की, वत्तबउ सबीलका, और उन्होंने पैरवी की तेरे रास्ते की। इस दुआ का हुसन देखिए, ए परवरदिगार हम तुझसे क्या अर्ज करें, तुझे तो हर शय का इल्म है, तेरी रहमत तो पहले ही हर चीज को अपने दामन में लिए हुए है, फिर भी हम तुझसे तेरी रहमत की दरख्वास्त करते हैं, और अहले जमीन में से जो मोमिन है और नेक लोग हैं इनके लिए हम इस्तग़फ़ार करते हैं। उनको तो हो सकता है कामों में अपने लिए इस्तग़फ़ार करने का वक्त ही ना मिले, हम उनकी दुआएं करते हैं। और ए परवरदिगार तू इनकी खताएं बख्श, इनके गुनाहों से दरगुजर फरमा। यहां से पता चलता है कि क्यामत के दिन मोमिनीन के हक में फरिश्ते भी शिफात करेंगे, और ये शिफात हक है, कबूल होगी। और साथ ही फिर अगली दुआ उनकी क्या, कितनी हुई थी अभी बातें, चार, तब आगे वक़िहिम अज़ाब अल-जहीम, और इनको जहन्नुम के अजाब से बचा ले। आप कहें ना कि अल्लाह मजिरनी मिनन नार, फरिश्ते आपके लिए दुआएं करें कि अल्लाह इनको आग से बचा ले। एक और दुआ फरिश्तों की, रब्बना वदखिलहुम जन्नाति अदनिल्लती वत्तहुम, ए परवरदिगार इनको दाखिल फरमा इन रहने वाले बागों में जिनका तूने इनसे वादा किया है। अल्लाह इनको अब माफ तो कर दिया, अब जन्नत भी दे दे, क्या ये अकेले जन्नत में जाए? नहीं। अगली दुआ, वमन सलह मिन आबाइहिम वअज़्वाजिहिम वज़ुर्रियातिहिम, और इनको भी जो नेक हो इनके आबा अजदाद और इनकी बीवियों और इनकी औलादों में से, ये सब हम तुझसे क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, तू यकीनन जबरदस्त कमाले हिकमत वाला। तेरी इन सिफात की वजह से ये दुआ करते हैं कि इन मोमिनों को अकेले ना जन्नत में रखना, बल्कि इनके घर वालों, इनके बीवी बच्चों, इनके बाप दादाओं में भी जो कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन रखते हैं, सलाह, कुछ ना कुछ उनके अंदर काबिलियत है, उनको भी जन्नत में इनका साथ दे दे। और वकीहिमुस सय्यिआत, और इनको बचा ले बुराइयों से, دنیا میں بھی برائیوں سے، آخرت میں برائیوں کے ببال سے. وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ، اور جس کو تو نے اس دن کی برائیوں سے بچا لیا، اس پر تو تو نے بڑا ہی رحم کیا. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے یہ فرشتوں کی یہ دعائیں. اب آپ مجھے بتائیے، فرشتوں کی یہ دعائیں کن کو ملیں گی؟ الَّذِينَ آمَنُوا. یہ ہے ایمان کی قیمت. میں اور آپ اس ایمان کو آج بڑا ہلکا سمجھتے ہیں نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. انسانوں کی تو انسانوں کی، فرشتوں کی دعائیں مل جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں ہم سب کو رغبت دلا دی کہ ایمان پکا کر لو. ایمان کی وجہ سے فرشتے بدر میں اترے تھے صحابہ کی مدد کو. آج ایمان ہے تو فرشتے نہ بھی اتریں، آپ کو انفرادی طور پہ ان کی دعائیں مل جائیں گی. یہ جو دعائیں ملتی ہیں نا، یہ انسان کے اندر اور نیکیاں کرنے کا حوصلہ پیدا کرتی ہیں، اور گناہوں کی دلدل سے نکالنے کی کوششیں کی جاتی ہیں. کیسے اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیے، عام فرشتے نہیں، عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کی بات کی ہے. یہ کتنے ہیں؟ بعض روایات میں آتا ہے کہ آج 4 ہیں اور قیامت کے دن 8 ہوں گے. 8 ہونے کی دلیل تو قرآن میں آتا ہے، ثمانیہ. اور ان کے ارد گرد کتنے؟ من حولہ، اللہ نے اس دی بس، کوئی نہیں جانتا کتنے فرشتے ہیں وہ، کیا کچھ ان کے ہاتھ میں. روایت میں آتا ہے کہ یہ لاکھوں ہیں. اور کروبی کہتے ہیں، کاف را واو با کروبی، کرب ہوتا ہے نا جیسے کاف، چھوٹی کاف سے. تو فرشتے جو ہیں ان کے ارد گرد کو کروبی کہتے ہیں. اور یہ اس دن بھی اور آج بھی دعائیں کرتے ہیں. اللہ نے فرشتوں کو مامور کر دیا کہ ایمان والوں کی بخشش کی دعا کرو. مجھے ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گھروں میں کچھ بزرگ چھوڑ دیتا ہے نا لمبی عمر تک کے لیے. کبھی آپ اپنے گھروں کے کوئی بزرگ دیکھیں، 50-60 تو خیر چھوڑیں، اوپر عمر ہوتی چلیں اور سب کو چھوڑ دیں. خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اور وہ ان کی خدمت کر رہے ہیں نا. اکثر میں نے ماؤں کے منہ سے سنا ہے، میں تو بس دعائیں کرنے کی رہ گئی ہوں، اللہ نے تو مجھے دعاؤں کے لیے رکھ دیا. ایک بچے کا کام ہے اس کی دعائیں، مائیں اوپر سے شروع کرتی ہیں نیچے تک لے کے آتی ہیں نا. بعض ہم اپنے لیے نہیں دعا کرتے، ہمارے ماں باپ ہمارے لیے کر رہے ہیں، مطمئن ہے وہ کر رہے ہیں تو کرنے دیں. اور بعض روایت میں آتا ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ اب ذرا میرے سے بات کرتے ہوئے سوچ کے بات کرنا. کہا اللہ تعالیٰ اب کیوں کہا، پہلے تو کبھی نہیں کہا. کہا پہلے تیری ماں زندہ تھی، اس کی دعاؤں کی وجہ سے کئی بار مجھے تجھ پہ اگر غصہ آیا تو میں نے چھوڑ دیا، اب کیئرفل رہے. اب وہ ماں باپ کی دعاؤں کو ذہن میں رکھیں. خوش قسمت ہوتے ہیں لوگ ماں باپ کے لیے، کہتے ہیں بس یہ اب ہمارے لیے دعا کریں، کرتے ہیں نا. اب ماں باپ امید ہے کہ اللہ نے ان کے گناہ معاف کر دیے، لمبی عمر ہے، نیکیوں والی. لیکن جن کو فرشتوں کی دعائیں ملے وہ کتنے خوش قسمت ہیں. اور دو وصف ہیں ان آیتوں میں، آمنو اور تابو. پچھلی زندگی پہ توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں، اور اس کے بعد اپنے کام سے لگ جائیں اور فرشتے آپ کی دعائیں کریں گے. اللہ میں نہیں کر رہی، تو ان سے کرا لے، میں بھی کروں گی، لیکن تو مجھے ان کی لگا دے. ایمان شرطے نہیں جاتا. اس کے بعد دوسرے اعمال کام آئیں گے انسان کے، ماں باپ، بیوی، بچے، شوہر، بیوی. یہ صرف وہ رشتے ہیں کہ جن کو دیتے جاؤ، ملتا جاتا ہے، لیتے جاؤ. فرشتوں کو آپ سے اور مجھ سے کیا لینا ہے؟ بے لوس دعائیں. ہم تو دعائیں کریں گے، ابھی تو بیچ میں گناہ کتنے ہیں جو ان دعاؤں کو پیچھے کر دیں. قبول ہی نہ ہو بھی، چلو بھاگ جاؤ، دعا کی ہے، چلو ٹھیک ہے جاؤ، اب میرا اور اس کا معاملہ. دیکھیے جب کوئی ہمارے لیے دعا کرتا ہے نا، اس کو بھی سمجھ لیں. کتاب و دعا میں تو آپ ڈیٹیل سے پڑھ ہی چکے ہوں گے یا پڑھیں گے آگے جا کے، کہ جب کوئی ہمارے لیے دعا کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس دعا کرنے کے بدلے میں اجر دے دیتا ہے. یا تو اس کی دعائیں قبول کر لے گا یا اس کو وہ چیز دے گا. اب اس کی دعا ہمیں لگتی ہے کہ نہیں لگتی، اللہ ہماری طرف رجوع فرماتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ ہم کس قابل ہیں. اگر ہم قابل ہوتے ہمیں دعا لگ جاتی، اور اگر ہم قابل نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے کے ہمیں اور پکڑ لیتا ہے. بتا بھائی، تیرے یہ کرتوت ہیں، تو نماز نہیں پڑھتا، تجھے کیسے فرشتوں کی دعا لگاؤں؟ تیرے پیٹ میں حرام کے لقمے، تجھے امام کعبہ کی دعا کیسے لگے؟ یہ دعا کا ٹاپک بہت اللہ اکبر اس صورت میں، چونکہ یہ موضوع آنا ہے تو اس لیے میں زیادہ بات کر بھی رہی ہوں اس پہ. آپ دیکھیے کہ کتنے لوگ ہیں جو اس وقت حرم میں ہوں گے، لاکھوں ہوتے ہیں نا، عمرے کرتے، رمضان میں جاتے، حج کرتے. اور عموماً ہم عادتاً بھی ضرور کہتے ہیں اللہ امت مسلمہ پہ رحم کر، مانگتے ہیں نا دعا، اللہ کل مسلم پہ رحم کر دے. تو پھر کیوں نہیں رحم ہو رہا امت مسلمہ پہ؟ फिर कुल मुस्लिमों के बच्चे क्यों नहीं संवर रहे? इमाम काबा की दुआएं कभी रमजान की सुने? जाके अरबी में उसका उर्दू तर्जमा करवा लें, रो रो के दुआ करते हैं अल्लाह फलस्तीन को आज़ाद करा दे, अल्लाह फलां को करा दे, अल्लाह मुसलमानों की निजात को, अल्लाह शबाब अल मुसलमिन की सलाह कर। हो क्यों नहीं रही? आप कहेंगे देखो इतने तो फरिश्ते हैं जो दुआएं मांग रहे हैं, कबूल क्यों नहीं हो रही? बीच में वैक्स लगा हुआ है गुनाहों का। गाफिर ज़म्ब काबिल तौब, कोई आपके लिए जितनी मर्जी दुआएं मांगे जब आपको लगनी नहीं है तो आप उससे फायदा क्या होना है? हम अपने ऊपर हाथ डाल के देखें तो हम खुद को दुआओं से महरूम किए हुए। फरिश्तों की ये दुआएं जिसको लग गई उसकी दुनिया तो दुनिया, आखिरत भी संवर जाएगी। और कई दफा आपको लगेगा जिंदगी में कि ये कोई किसी की दुआ लगी है, ये आप नहीं। और मैं अक्सर साथियों को कहती हूँ कि ये जो कुरान आप पढ़ते और पढ़ाते हैं ना, या दीन की खिदमत करते हैं, याद करें अपनी कोई नानी या दादी या कोई बड़ा जिसको आपने कभी खुशी से कोई पानी का घूंट भी पिलाया था, उसने कभी आपको दुआ दी होगी और वो आपको लगी और आप इस कुरान सीखने के लिए बैठ गए आके। ये दुआओं के बगैर काम नहीं चलता, दुआएं लेने वाले खुश नसीब होते। मैं अक्सर सोचती हूँ कि हम यानी जो अल्लाह ने हमें माल दिया ना उसको दुआओं का जरिया बना सकते हैं, लेकिन लोग उससे अपनी ज़ात की चीज़ें लेते रहते हैं और नेम तो नहीं लेते। कई गरीब रिश्तेदार होते हैं, आपका शौक उनकी ज़रूरत है, आप अपना शौक पूरा ना करें, आप किसी की ज़रूरत पूरी कर दें, उससे जो दुआ मिलेगी ना वो आपको अपनी चीज़ लेकर भी खुशी कोई नहीं होनी थी जो उधर थी, लेकिन हमारा दिल कितना खुला अपने लिए खर्च करने में। और किसी को गिफ्ट देना होना तो हम कहते हैं बस इतने का ही ठीक है, इससे ज्यादा का नहीं है मेरा उनसे लेन देन, बस इतने के अंदर आ जाएगा तो ठीक है। उसको जो दे रहे होते हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन आप अल्लाह को दे रहे होंगे, अल्लाह के लिए कर रहे होंगे, तो आपको इसकी कोई परवाह नहीं होगी। मुझे लगता है ये खूबसूरत तरीन आयते हैं दुआओं की सूरत में। अल्लाह ताला फरिश्तों की दुआएं दिलवाता है, और ईमान का रिश्ता जो अर्शियों को फर्शियों से मिला देता है, इसी ताल्लुक की वजह से वो अर्श पे बैठे हुए आपके और ईमान वालों के लिए दुआ कर रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि इंसान इसको डिज़र्व करे। और ये जो इसमें बात हुई है ना कि अल्लाह उनको दाखिल कर दे और उनके बच्चों के साथ जोड़ दे, तो इसको हमने पीछे भी पढ़ा था, यहाँ दोबारा आ गया तो खुशी होती है हमेशा इस बात को सुनकर कि जन्नत में जाने के बाद जब एक इंसान वहाँ अपने कुछ रिश्तेदारों को नहीं पाएगा तो क्या होगा। एक तो रिवायतें सुन लीजिए। हज़रत सईद बिन जुबैर कहते हैं कि मोमिन जब जन्नत में जाएगा तो अपने बाप बेटे भाई वगैरह को पूछेगा कि वो किधर है, वो जन्नत में नहीं है। जैसे हम कहीं चले तो फौरन जाके पूछते ना, अरे वो किधर है, वो किधर, अच्छा वो नहीं आए, किधर है, आ रहे हैं। एक अजीब सी फीलिंग आती है ना अपनों को मिलकर, तो पूछेंगे किधर है, तो बताया जाएगा कि उन्होंने तेरे जैसे अमल नहीं किए इसलिए वो यहाँ नहीं है। तो ये कहेगा मैंने जो अमल किया था वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने और उनके लिए किया था, तो हुक्म होगा जाओ उनको भी जन्नत में दाखिल कर दो। यहाँ तक आता है रिवायत में कि कुछ लोगों को जब जन्नत में जाने को कहा जाएगा तो वो खड़े हो जाएंगे, अल्लाह नहीं मैंने फुलां 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 के बगैर नहीं जाना। हम कहते हैं किधर है वो लोग, हम उनको कहते हैं बस हम आपको दुनिया में नजराने देते हैं, बस आप वहां जाके अकड़ जाइएगा। कोई नहीं अपनी मर्जी से किसी को लेके जा सकता, कोई खुद चला जाए तो बड़ी बात है, इससे बढ़ के और क्या है कि इंसान इतना बेबस है। आज दुनिया में कर ले, और यकीन करें दीन की मोहब्बत वो साथ है कि हो सकता है वहाँ उम्मीद की जाए कि कोई दीन का साथी खड़ा हो जाए। ना मैं क्लास में जाती थी इसके बगैर, ना मैंने जन्नत में जाना है इसके बगैर। हम तो क्लासों में आ जाते हैं अपनों के बगैर, तो जन्नत में भी चले जाएंगे, नहीं छोड़ो वो मसरूफ है। मैं अक्सर सोचती हूँ कि छोटी छोटी नेकियाँ जो हम कर सकते हैं वो क्यों नहीं करते। बड़ी नेकियों भी आहें भरते हैं, हौके निकलते हमारे अंदर से, लेकिन हम कब समझेंगे? अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें समझ दे दे, तड़प दे दे, तकलीफ। हम अपनी जिंदगियों को मैनेज करना सीखें। इतनी जल्दी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, ये नहीं हो सकता, फलाज नहीं आ सकता, फलाज ये काम नहीं कर सकता, मैं नहीं जा सकती। हम तो अपने लिए ये सोच लेते हैं, दूसरों के लिए कैसे होगा। कभी कोई मुझसे पूछ लेना कि मैं आज ना हूं, तो यकीन करें इतनी ऑप्शन मेरे पास उसके लिए होती हैं कि अल्लाह के हुक्म से वो फिर बंदा कहता है अच्छा चले ठीक है, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, मुझे क्यों नहीं इसका ख्याल आ गया। मेरा बस नहीं चलता कि मैं किसी को इधर बिठा के जाके किसी दूसरे को ले आऊं, क्यों? कि ये तड़प होती है। रिवायत सुन लीजिए, चंद रिवायतें इस बारे में। और सही मुस्लिम की रिवायत है कि जब मुसलमान अपने मुसलमान भाई के लिए उसकी गैर हाजिरी में दुआ करता है तो फरिश्ता इसकी दुआ पर आमीन कहता है और इसके लिए दुआ करता है कि अल्लाह तुझे भी यही दे जो तू इस मुसलमान के लिए मांग रहा है। اسی طرح مسند احمد میں امیہ بن سلط کے بعض اشعار کی رسول اللہ نے تصدیق کی، ایک شاعر تھا تو اس نے جو شعر کہے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس نے ٹھیک کہا ہے، اور وہ شعر عربی کے ہیں، زخلو و سور و تحتی رجلی یمین ہی و نصر و بلیل اخرا و لئیس و مرسد، اردو کا ترجمہ کیا کہ مطلب یہ کچھ ایسے ستاروں کی بات کی ہے کہ جو سورج سرخ رنگ طلوع ہوتا ہے، پھر گلابی ہو جاتا ہے، پھر اپنی حیت کبھی ظاہر نہیں ہونے دیتا بلکہ روکھا پیکا ہی رہتا ہے، آپ نے فرمایا سچ ہے، یعنی بھی انہوں نے چار فرشتوں کے نام لے کر کہا کہ یہ اس طرح کے وہاں کام کرتے ہیں. قصہ مختصر یہ کہ اگر کوئی کلام ایسا ہوتا تھا جس میں غلطی نہ ہوتی تو اللہ کے نبی اس کی تصدیق فرما دیتے تھے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ چار فرشتے ہیں، زخل، ثور، نصر اور لئیس، یہ چار فرشتوں کے نام آتے ہیں روایت میں. ابو داؤد کی ایک روایت ہے کہ بتحا میں اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کی ایک جماعت سے قبر کو گزرتے ہوئے دیکھ کر سوال کیا، اس کا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا صحاب. آپ نے فرمایا اسے مزن بھی کہتے ہیں. کہا ہاں. فرمایا یا انان بھی. اب یہ چند واقعات ہیں جس کو چھوڑ دیجئے، بات کر لیتے ہیں ہم اس بات پہ مزید تھوڑی سی کہ کیسے ہم اپنی اولادوں اور اپنے پیاروں کو بھی جنت کے جہاز میں بٹھانے کے قابل ہی ہو جائیں. وہی بات یاد کر لیں جو پچھلے سبقوں میں ہوئی تھی کہ اکانومی سے فرسٹ کلاس میں آ جائے گا بندہ کب؟ جب سیم ڈائریکشن ہوگی، سیم فلائٹ ہوگی، دوسری فلائٹ سے تو نہیں ہو سکتی. تو اس کے لیے یہ کہ آج دنیا میں ہی اس کی کوشش کی جائے، آج اس کے لیے کوشش کی جائے، جو راستے اپنے لیے پسند کریں وہ اولاد کے لیے بھی اور وہی پیاروں کے لیے بھی. کوئی بری بلی بات دیکھیں تو اچھے طریقے سے درد مندی کے ساتھ ان کو بتا دیں. ہم بتاتے نہیں ہیں، غلطیاں دیکھتے ہیں اپنوں میں، پھر کہتے ہیں اب ان کو کیوں بتائیں، ہم مائنڈ کریں گے کتنے خوش ہیں اس وقت، اس وقت اب میں یہ بات کہہ کر ان کے رنگ میں بھنگ نہیں ڈالوں. نہیں، بات کرنے کا انداز اچھا ہو، موقع مال دے کے بات کریں لیکن اگلے کو احساس ضرور دلائیں. ایک کال ہے کسی کا، مطرف بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایمانداروں کی خیر خواہی فرشتے بھی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے یہی آیت پڑھی، اور شیاطین ان کی بدخواہی کرتے ہیں، یعنی جس طرح فرشتے ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں نا، تو شیطان برے کام کرنے والوں کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں. یہ بات سمجھ آتی ہے اسے؟ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان دعاؤں کو لینے کا مستحق بنا دے. حق تو آج نہیں ہے لیکن اللہ کہتا ہے وذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے اصل کامیابی. اور جتنا ان چیزوں کے اوپر ہم چلیں گے لیں گے اتنا اللہ کے حکم سے یہ فائدہ ہوگا. چونکہ اب ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے سچے مومنوں کے حالات پیش کیے، پھر مومنوں کو فرشتوں کی دعائیں لگ گئیں اور باپ دادا کے لیے سب کچھ کر دیا، اب اس کے برعکس اگلی آیتوں میں صرف سنتے ہوئے سن جائیے کہ کافروں کے ساتھ کیا ہوگا.